नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
वो जो मेल मिला पुकराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। वो जो मेल मिला पुकराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए। स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, करो इनका पालन। धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो मन के दीन है। स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए रेडियो के समीप बैठे हुए हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम नए नियम की पुस्तक और उसके छठवीं पुस्तक रोमियो की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि पौलुस न्याय के विषय में बातें कर रहा था और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब पौलुस परमेश्वर के न्याय के सिद्धांत बताता है जिसके द्वारा वह सभ्य एवं शिष्ट पापियों का न्याय करेगा। तो मित्रों, आइए आज हम रोमियो के पत्री दो अध्याय उसके दो पद को पढ़ें जिसमें हम पहले सिद्धांत को पाते हैं। लिखा हुआ है रोमियो के पत्री दो अध्याय उसके दो पद में, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का दंड वास्तविकता के आधार पर होता है। आज कितने मनुष्य कलीसिया के सदस्य भी भ्रम के संसार में जी रहे हैं। वे सुसमाचार के सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं। मैं अनेक धर्मी जनों को कहते हुए सुनता हूं, ओह, मैं बाइबल पढ़ना नहीं चाहता हूँ। जब वे परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वे यूहन्ना की नाई परमेश्वर के दंड को देखते हैं जैसा उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखा। मेरे प्रियो, आरंभ में तो उसने वचन को रोमांचक पाया, उसके मुंह में वह मीठा लगा था, परंतु जब उसने उस पुस्तक को निगल लिया तब वह उसके पेट में पीड़ादायक हो गया था। वह पेट में जाकर कड़वा लग रहा था। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में। दूसरी ओर अनेक विश्वासी बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, परंतु सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते। वे सच्चाई तो सुनना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक अर्थात मनुष्य की वास्तविक दशा पर दंड की आज्ञा होती है। मेरे प्रियो, ध्यान रखिए कि ये न्याय के सिद्धांत हैं, उद्धार के नहीं। मनुष्य के भीतर यह समझ है कि एक उच्च अधिकारी द्वारा उसका न्याय किया जाएगा। परमेश्वर का आने वाला दंड एक ऐसा तथ्य है जिससे प्रत्येक मनुष्य जो मसीह से विलय है, अलग है, या तो डरता है या उसका इनकार करता है। न्याय और दंड के विषय धर्मशास्त्र अति स्पष्ट है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 31 पद में पौलुस ने एथेंस वासियों से कहा था, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने धार्मिकता, आत्मसंयम और आने वाले न्याय के विषय में फेलिक्स के साथ भी विवाद किया था। वस्तु स्थिति तो यह थी कि फेलिक्स उपदेश सुनना नहीं चाहता था। परमेश्वर का न्याय मनुष्य के न्याय से विपरीत है। मनुष्य के सामने सब तथ्य नहीं होते हैं और उसका न्याय पक्षपात का होता है। परमेश्वर का न्याय सब तथ्यों को देखता है। परमेश्वर मनुष्य की वास्तविक स्थिति को जानता है। मनुष्य जैसा है वैसा ही परमेश्वर की दृष्टि में दिखाई देता है और उसी के आधार पर वह उसका न्याय भी करेगा। मित्रों, मुझे याद है कि जब मैं छोटा बालक ही था तब मैं महुआ के पेड़ के नीचे महुआ के सीजन में महुआ चुनता था और मैं उस काम को निपुणता के साथ नहीं कर पाता था। मैं बोरा भरकर उसे लाता और तौलने वाला यह नहीं पूछता था कि मैंने उसे कहां से जमा किया है, कैसे जमा किया है, या वह किसके खेत का या किसके पेड़ का है। उसका काम केवल उसे तौलना था। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, तू तराजू में तौला गया। परमेश्वर का यह वचन उस प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो अपनी धार्मिकता की डींग मारता है। मेरे विचार में एक सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है कि पतित मनुष्य पर उंगली उठाना चाहिए, परंतु वह भिन्न है। बहुतों का सोचना है कि हिटलर और स्टालिन को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपने विषय में सोचते हैं कि उन्हें दंड से बच जाना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य का न्याय अपने दृष्टि में उसे जैसा उसे देखता है उसके आधार पर ही करेगा। क्या आप इस आधार पर परमेश्वर के समक्ष खड़े होना चाहते हैं? मैं कभी नहीं चाहूंगा। हम रोमियो के पत्र 2 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे काम ही करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? मेरे प्रियो, रॉबर्ट गेवेट ने मानवीय नियमों को तोड़ने वाले के लिए बचने के 4 मार्गों पर ध्यान आकर्षित किया है। पहला है, उसका अपराध पकड़ा ना जाए। दूसरा, वह न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। यह अमेरिका की व्यवस्था में है। तीसरा, पकड़े जाने के बाद कोई वैधानिक दांव हो जो न्यायिक कार्यवाही को रोक पाए। और चौथा है, दोषी करार दिए जाने के बाद वह जेल तोड़कर भाग जाए और छिपा रहे। मेरे मित्रों, परमेश्वर के न्याय में मनुष्य के पास इनमें से एक भी बचाव का मार्ग नहीं है। आपका अपराध पकड़ा जाएगा, आप परमेश्वर के न्याय क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप उसके बंदी गृह से भाग भी नहीं सकते हैं। इब्रानियों के लेखक ने पूछा 2 अध्याय के 3 पद में, हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? तब हम आगे देखते हैं रोमियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मेरे मित्र, आज हमें यह बोध होना आवश्यक है कि परमेश्वर की भलाई के कारण हमें उसके समक्ष घुटने टेकने हैं, परंतु होता इसके विपरीत है कि मनुष्य उसकी भलाई के कारण उससे दूर होता जा रहा है। दाऊद दुष्टों की समृद्धि देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ था, परमेश्वर उनका कुछ नहीं कर रहा था। भजन संहिता 73 में दाऊद ने कहा 3-5 पद में, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है, उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। फिर पद 9 में वह कहता है, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। तब वह परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया तो उसने उनका परिणाम समझा। जब तक कि मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा तब तक मैं नहीं समझ पाया। मेरे मित्रों, वे परमेश्वर से दंड पाएंगे। यदि आप पतन के मार्ग पर हैं तो यह न सोचें कि मैं उन प्रचारकों में से हूं जो आपको सब बातों से वंचित कर दे। यदि आपने मसीह में और इस जीवन में एकमात्र आशा में विश्वास नहीं किया है तो मेरे भाई, आप इस पृथ्वी को संतरे के समान चूस लें और इसका संपूर्ण रसास्वादन कर लें। जितना पी सकते हैं पी लें, जितना पाप करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि आने वाले जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसा ही जीवन शैली चाहते हैं तो उचित होगा कि आप जब तक इस संसार में हैं यह सब कर लें, खाओ पियो आनंद करो, कल तो मर ही जाना है। मेरे मित्रों, आपको एक उद्धारक की आवश्यकता है और आवश्यक है कि परमेश्वर की भलाई आपको उसके निकट ले आए। हम रोमियो के पत्र 2:5 पद में आगे पढ़ते हैं, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। मित्रों, ध्यान दीजिए, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जान लें कि परमेश्वर आपके साथ भला है। परमेश्वर ने आपको आशीषें दी है। इस पृथ्वी पर उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो भूख के मारे मर रहे हैं, और आप यहां पर हैं। एक दुष्ट मनुष्य संसार में ऊंचाइयों पर निर्वाह कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा? क्या आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे? मेरे मित्रों, परमेश्वर की भलाई आवश्यक है कि आपको मन फिराव के लिए प्रेरित करे। अब हम आगे देखते हैं पद 6 में जो दूसरा सिद्धांत है। रोमियो के पत्र 2:6 पद में लिखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ध्यान दीजिए, वह प्रत्येक मनुष्य को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। दंड और प्रतिफल के निर्णय का आधार परिशुद्ध न्याय है। मनुष्य के काम परमेश्वर पवित्र ज्योति में उसके सामने रहेंगे। कोई भी मनुष्य जिसका मस्तिष्क सही संतुलन में है दंड पाना नहीं चाहेगा। आपको कुर्नेलियुस का स्मरण होगा, वह एक भला मनुष्य था परंतु पथ भ्रष्ट था। मित्रों, हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 2:7 पद में, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हम ध्यान में रखें कि इस दूसरे सिद्धांत में जीवन शैली मुख्य विषय नहीं है, परंतु जीवन शैली न्याय का आधार अवश्य है। भलाई करने वाला भी अपने कर्मों के आधार पर प्रतिफल पाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20:12 पद में यूहन्ना कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। वह व्यक्ति जो अनंत जीवन के लिए काम करना चाहता है ऐसा कर सकता है, उसका न्याय उसके कामों के अनुसार होगा, परंतु उसे चेतावनी दी गई है कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20:15 पद में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, मसीह में विश्वास करना कि वह हमारा उद्धार करता है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देता है। अनंत जीवन प्रयास करने का प्रतिफल नहीं है, वह मसीह में विश्वास करने वालों के लिए एक वरदान है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मसीह यीशु में विश्वास करने की आवश्यकता है। अब न्याय का तीसरा सिद्धांत देखिए, रोमियो के पत्र 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, यह पुराने नियम का भी एक मुख्य सिद्धांत रहा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। जी हाँ, शिमोन पत्रस ने कुरनिलियुस के घर में जाकर यह समझा। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 34 पद में लिखा है, तब पत्रस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी को अपना पिट्ठू नहीं मानता है, चमचा नहीं मानता है, उसके पास पालतू कुत्ते नहीं हैं, उसके समक्ष सब मनुष्य एक बराबर हैं, न्याय की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, या इसलिए नहीं कि वह अंधा है, परंतु इसलिए कि वह मनुष्यों को अनेक रेशम के वस्त्र या चिथड़ों में ना देख पाए। उसकी दृष्टि में सबको बराबर होना है। कलीसिया की सदस्यता, एक अच्छा परिवार, विशिष्ट नागरिकता परमेश्वर के समक्ष अनुग्रह प्रदान नहीं करते हैं। आपके पास उद्धार करता है या नहीं, यही मुख्य विषय है। हम रोमियो के पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के न्याय का यह एक और सिद्धांत है। देखिए अगले पद में यह कैसे व्यक्त किया गया है। रोमियो के पत्र 2 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। मुझे सुनने को मिलता है कि अन्य जातियां अनंत विनाश के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह के बारे में नहीं सुना है और न ही उसे ग्रहण किया है। मेरे मित्रों, वे भटक चुके हैं क्योंकि वे पापी हैं। सब मनुष्यों की यही दशा है। मनुष्य के पास जो ज्योति है उससे उसका उद्धार नहीं होता है, उस ज्योति के आधार पर उसका न्याय होता है। परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं। बहुत से लोगों का विचार है कि यदि वे पर्वतीय उपदेश का अनुमोदन करेंगे तो उद्धार पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम 5वां सिद्धांत देखते हैं। रोमियो के पत्र 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर अन्य जाति का उसके विवेक के आधार पर न्याय करता है। कुछ लोगों का सोचना है कि अन्य जातियां परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर के न्याय से वे बच जाएंगे, परंतु सच तो यह है कि वे उस ज्योति के अनुसार नहीं जी रहे हैं जो उन्हें प्राप्त है। परमेश्वर उन्हें इसी आधार पर रखेगा और परखेगा। हम रोमियों के पत्र 2 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, हमें भ्रम है कि हम भले मनुष्य हैं अपने विचार में, इसलिए हमारा उद्धार होगा। परमेश्वर भले मनुष्यों का भी न्याय करेगा। वह उन्हें यीशु की शिक्षा के अनुसार परखेगा। मसीह यीशु ने कहा था कि किसी स्त्री को देखकर लालसा की तो वह व्यभिचार है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 27 और 28 पद में पढ़ते हैं। ये मनुष्य के मन के भेद का एक ही उदाहरण है। क्या आप अपने मन की बातों को उजागर करवाना चाहते हैं? मीठी मीठी बातें जो आपने कही वह नहीं, परंतु मन के छोटे छोटे अशुद्ध विचार, इन सब बातों से हमें यीशु के शरण आने की प्रेरणा मिलना चाहिए कि वह हमारा उद्धार करे। परमेश्वर धर्मी जनों का भी न्याय करेगा, विशेष करके यहूदियों का, क्योंकि उनका धर्म परमेश्वर प्रदत्त धर्म था। आइए हम पढ़ें रोमियो की पत्र 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, मित्रों ध्यान दीजिए, धर्म के काम इस मनुष्य के लिए रुकावट का कारण नहीं थे। इस कारण वह घमंडी और आत्मनिर्भर हो गया था। ज्योति अतिरिक्त उत्तरदायित्व उत्पन्न करती है, जिसके कारण अधिक दोष दिया जाता है। यहूदियों को अन्य जातियों पर 10 लाभ प्राप्त थे, जो इन पदों में व्यक्त हैं। पहले 5 उसके अस्तित्व से संबंधित थे। आइए हम देखें, पहला यहूदी नाम धारण करना, दूसरा व्यवस्था का आधार, तीसरा परमेश्वर पर गर्व, चौथा परमेश्वर की इच्छा जानना, पांचवा व्यवस्था के निर्देशानुसार अधिक उत्तम बातों का ज्ञान। अब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसके 19 और 20 पद, लिखा हुआ है, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। मेरे मित्रों, अंतिम 5 लाभ जो यहूदी के थे वे उसके कर्म संबंधित थे। तो आइए देखें, पहला है अंधों का अगुआ, दूसरा अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति, तीसरा बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, चौथा बालकों का उपदेशक, और पांचवा व्यवस्था में विहित ज्ञान और सत्य का नमूना। मेरे मित्रों, यह सच है कि परमेश्वर सबका न्याय करेगा और विशेष करके यहूदियों का। उससे कुछ छिपा नहीं है, वह सबके मन को जानता है। अब पौलुस एक प्रश्न पूछता है, जिसे हम रोमियो के पत्री 2 अध्याय उसके 21 और 22 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है कि व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? मेरे मित्रों, पौलुस 3 सामान्य पापों की चर्चा करता है। पहला है अनैतिकता, मनुष्य के संबंध में पाप। दूसरा है विषय शक्ति, स्वयं के प्रति पाप। और तीसरा है मूर्ति पूजा, परमेश्वर के विरोध में पाप। अपने आप को नहीं सिखाता, दूसरे शब्दों में क्या तू जो सिखाता है वह स्वयं करता है? हम में से अनेक के लिए हमारा प्रचार हमारे जीवन से अधिक अच्छा है। आप ही मंदिरों को लूटता है, या क्या तू मंदिरों को लूटता है? बेबीलोन की बंधुआई में यहूदियों ने व्यापार आरंभ किया। जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने वहां मूर्ति पूजा नहीं की, परंतु उन्होंने अन्य जाति के मंदिरों से माल खरीदकर बेचना आरंभ किया। आज कुछ विश्वासी ऐसे व्यापार में सहभागी हैं, जिसे वे कलीसिया में परित्यक्त मानते हैं, केवल पैसा बनाने के लिए। मेरे प्रियो, ये 3 पाप जिनका पौलुस यहां उल्लेख करता है, अनैतिकता, विषयाशक्ति और मूर्ति पूजा, उन्हें पद 1 में वह विपरीत क्रम में रखता है। मूर्ति पूजा यहूदियों के लिए एक भयानक पराकाष्ठा थी, वह उससे अधिक आगे नहीं बढ़ सकता था। मैं सोचता हूं कि क्या हम भी मसीह की निंदा करते हैं? किसी ने कविता स्वरूप इस प्रश्न को रखा है, सुसमाचार प्रतिदिन 1 अध्याय लिखा जाता है। आपके कर्मों और शब्दों द्वारा मनुष्य आपके शब्दों को पढ़ता है, अविश्वासियों को या सत्य? बताओ, आपके अनुसार सुसमाचार क्या है? अब वह सर्वाधिक महत्व की बात करता है। जी हाँ, आज ऐसे ही कई मसीही हैं। रोमियो के पत्र 2 अध्याय के 25 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा है। मूसा की व्यवस्था का चिन्ह था खतना करवाना। इस अनुष्ठान में तो कोई योग्यता थी ही नहीं। इसका अर्थ केवल यही था कि वह मनुष्य मूसा की व्यवस्था का पालन करता है। यदि वे व्यवस्था का उल्लंघन करते थे तो खतना का अपमान होता था, जिसे पवित्र होना था वह अशुद्ध हो जाता था। खतना पुरुष के खलड़ी को उतारना है। मेरे मित्रों, यही विचार हमारे कलीसियाई रस्मों के संबंध में प्रासंगिक है। बपतिस्मा कलीसिया की एक रस्म है। यदि वह मन में परमेश्वर के काम की बाहरी अभिव्यक्ति करता है, परंतु यदि बपतिस्मा प्राप्त मनुष्य उद्धार का प्रमाण प्रकट न करे तो वह निंदा है। कलीसियाई सदस्यता की भी यही बात है। कुछ विश्वासियों का जीवन कलीसियाई सदस्यता की निंदा का कारण होता है। मेरे मित्रों, आगे हम सुनते हैं पौलुस क्या कहता है। रोमियों के पत्र 2 अध्याय के 26 पद में लिखा है, सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी। मैं एक उपमा देता हूँ। यदि मेरी पत्नी अपनी विवाह की अंगूठी खो दे तो वह अविवाहित नहीं हो जाती। विवाह अंगूठी से बढ़कर है, यद्यपि अंगूठी उसका प्रतीक है। रोमियों की पत्री 2 अध्याय के 27 पद में लिखा है, और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी न ठहराएगा। मेरे प्रियो, विवाह की अंगूठी का ही उदाहरण देते हुए विवाह की अंगूठी पहनना एक पवित्र बात का प्रतीक है। अब जिसका यह प्रतीक है उसके प्रति अनिष्ठा अंगूठी का अपमान है। एक बार मैंने कलीसिया के एक पासवान को रेस्तरां में एक सुंदर युवती से बातें करते हुए देखा। वह उसकी पत्नी नहीं थी। मैं जिस बात से प्रभावित हुआ वह यह थी कि उसके हाथ में विवाह की अंगूठी चमक रही थी, जिससे वह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कैसी निंदा। मुझे देखकर वह व्यक्ति लजा गया। अब आप देखते हैं कि विवाह की अंगूठी अर्थहीन हो गई। यहाँ पौलुस के कहने का अर्थ है कि खतना किसी बात का प्रतीक होना है। मित्रों, हम रोमियों के पत्र 2 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। मूसा की व्यवस्था ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि खतना मन का होना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय के 16 पद में मूसा ने कहा, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो। जी हाँ, आज मुझे और आपको भी हमारे अपने मन को खतना करने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के प्रियजन हो जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और आप इस पर अवश्य ही आचरण करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में बिताएंगे। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मार्ग में हम